चार दिन हो चुके थे अक्षय को यहाँ आए। वो अपने दो कलीग्स के साथ कमरा शेयर कर रहा था, इसलिए आहाना से बात करने का मौका कम ही मिलता था उसे। फिर भी वो कुछ वक्त चुराहे लेता था उसके लिए। कभी मैसेज पर उनकी थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ की काम की बातें हो जाती थीं, तो कभी फ़ोन पर हालचाल पूछ लिया जाता था। आहाना भी ज़रा व्यस्त चल रही थी, लगभग रोज़ ही स्कूल से आने के बाद मार्केट के चक्कर लग रहे थे, तो कभी अंतरा उसके बाहर निकलने पर रोक लगा देती थी। कमरे में बंद करके वो उसकी बहन से ब्यूटिशियन बन जाती थी। दोपहर का वक्त था, आहाना का लंच के बाद का पीरियड फ्री था। इस वक्त स्टाफ रूम में बैठी वो टेस्ट पेपर्स चेक कर रही थी, जब अचानक ही उसका फ़ोन बज उठा। स्क्रीन पर अक्षय का नाम देखकर आहाना ने पेन टेबल पर रखा और वहाँ खुद को अकेला पाकर कॉल पिक कर ली। हेलो हेलो आहाना, क्या कर रही थी आप? मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? अगर आप अभी बिजी हैं तो हम बाद में बात करते हैं। फ़ोन उठाते हुए अक्षय ने एक सांस में इतना कुछ कह दिया था। शायद उसने आज गलत वक्त पर फ़ोन किया था, इसलिए ऐसा था। नहीं, आपने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया, मैं व्यस्त नहीं थी, फ्री पीरियड था तो बस खाली बैठी टेस्ट पेपर्स चेक कर रही थी, बाद में कर लूँगी। आप बताइए, आज इस वक्त कैसे फ़ोन किया? आज लंच ब्रेक ज़रा देर से मिला और लंबा भी, तो मैं कैंप से बाहर निकला हूँ, सोचा फ़ोन करके देख लूँ, अगर आप फ्री हुई तो कुछ बातें हो जाएंगी। लंच कर लिया आपने या मुझसे बात करने के लिए ऐसे ही बाहर निकल गए? आहाना ने चिंतित स्वर में सवाल किया, जिसे महसूस करते हुए अक्षय मुस्कुरा उठा। कर लिया लंच, आप परेशान मत होइए। जी, कैसा चल रहा है आपका काम? ठीक ठाक चल रहा है। आप बताइए, और कितना इंतज़ार करवाने का इरादा है आपका मुझे? कब देंगी आप मेरे सवाल का जवाब? अक्षय ने तो आम अंदाज में सवाल किया था, पर आहाना कुछ विचलित हो गई थी और चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए थे। मैंने अभी तक घर में किसी से बात नहीं की है। तो कब बात करेंगी आहाना? बस दो दिन और, तीसरे दिन वापस दिल्ली चला जाऊँगा, फिर मुलाकात सीधे शादी में होगी। अक्षय अब गंभीर लग रहा था। आहाना कुछ पल माथे पर बल डाले सोचती रही, फिर सकुचाते हुए बोली, आप मुझे शाम तक का वक्त दीजिए, मैं बताती हूँ आपको। आहाना, आप जानते हैं ना कि अगर आप इनकार करना चाहें तो कर सकती हैं, मेरे तरफ से आप पर कोई दबाव नहीं है। जी जानती हूँ, मैं आपको शाम तक जवाब देती हूँ, आहाना ने हामी भरी। दोनों के बीच चंद बातें हुई, फिर अक्षय को जाना पड़ा। कॉल कटने के बाद से आहाना विचलित सी फ़ोन को देखते हुए सोचने लगी कि कैसे बात करे घर पर इस बारे में। रोज़ तो कोशिश करती है पर हिचकिचा जाती है। उस जैसी शर्मीली और संकोची लड़की के लिए अपने मम्मी पापा से बात करना बेहद मुश्किल काम है। कुछ देर बाद पीरियड खत्म होने की घंटी बजी। पल्लवी जब वहां पहुंची, तब भी आहाना परेशान सी अक्षय से मिलने वाली बात के बारे में ही सोच रही थी। अनु मेरी जान, ये दिन रात किसके ख्वाबों में खोई हो? पल्लवी ने दो चार बार आवाज देने के बाद अब की उसे झंझोड़ते हुए सवाल किया। आहाना, जिसे अब तक कोई आवाज सुनाई ही नहीं दी थी, उसके यूं हलाने पर सक पकाते हुए होश में लौटी और फटी आंखों से उसे देखते हुए हड़बड़ी में बोली, हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि ये दिन के उजाले में किसके ख्वाबों में खोई हो? पल्लवी ने उसके चेहरे पर उलझन भरे भाव देखकर अपना सवाल दोहराया। किसी की भी नहीं, तो तुम कब आई? आहाना ने अचकचाते हुए तुरंत ही इनकार में सर हिला दिया। बस अभी, पल्लवी ने सहजता से जवाब दिया, फिर गहरी निगाहों से उसे देखते हुए गंभीर स्वर में बोली, अनु क्या हुआ है? तुम्हारी जुबान क्यों लड़खड़ा रही है और तुम कुछ परेशान व घबराई हुई भी लग रही हो, सब ठीक तो है? हाँ नहीं, वो, आहाना ने सक पकाते हुए पहले हामी भरी फिर इनकार में सर हिलाया और आखिर में मौन साधे उलझन भरी निगाहों से उसे देखने लगी। पल्लवी शायद उसके दिल की कैफियत को समझ रही थी। उसने चिंतित निगाहों से उसे देखते हुए सौम्य स्वर में बोली, अनु क्या हुआ है? इतनी नर्वस क्यों है तू? कोई बात है तो बेझिझक मुझे बता, शायद मैं तेरी कोई हेल्प कर सकूं। आहाना ने अब अपनी सारी प्रॉब्लम संक्षिप्त में उसके सामने कह सुनाई और परेशान से उसे देखने लगी। पल्लवी ने ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी, फिर सोचते हुए गंभीर स्वर में बोली, ओ तो बात यह है, अक्षय बाबू हमारी नगरी के तरफ ही आए हुए हैं आजकल और उन्होंने तुम्हारे सामने अपनी होने वाली बीवी और हो चुकी मंगेतर यानी तुमसे मिलने की इच्छा जाहिर की है, पर तुम ना तो उन्हें इनकार कर पा रही हो ना ही घर पर इस बारे में बात कर पा रही हो और छुपकर उनसे मिलने की तुम्हारे संस्कार और आदर्श इजाजत नहीं देते। आहाना ने तुरंत ही सहमति में सर हिला दिया। पल्लवी अब गहरी सांस छोड़ते हुए बेफिक्री से मुस्कुरा उठी। अरे पर इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारी अक्षय जी से सगाई हो चुकी है, कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है, अगर वो तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम्हें फौरन हाँ कह देना चाहिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं, इसलिए तुम सारी फिक्रें और चिंता मुझ पर छोड़ दो, मैं तुम्हारे भैया से बात कर लूंगी और उनकी हाँ ही होगी, मम्मी पापा को इस बारे में बताना ना बताना इसका फैसला भी वो कर लेंगे और मुझे नहीं लगता कि उन्हें तुम्हारे अक्षय जी से मिलने से कोई एतराज होगा, इसलिए तुम तो बस जल्दी से उन्हें जवाब दे दो और उनसे मिलने की तैयारी करो, बाकी सब संभालने के लिए मैं हूँ यहाँ। पल्लवी के सपोर्ट ने आहाना की बहुत बड़ी उलझन सुलझा दी थी। पल्लवी ने उसी वक्त उसे यस में जवाब भिजवा दिया, जिसका रिप्लाई भी अगले ही पल आया, जिसमें एक स्माइली थी। आहाना ने मिलने के लिए कह तो दिया था पर अब भी थोड़ी परेशान थी। शाम को पल्लवी ने त्रिशांत से बात कर ली थी और जैसे की उम्मीद थी उसने इजाजत दे दी थी। जयंती जी को भी बता दिया था, उनकी भी परमिशन मिल गई थी पर उन्होंने अकेले जाने से मना किया था। अगले दिन दोपहर के 4 बज रहे थे। आहाना जयंती जी की गोद में सर रखकर लेटी थी और वो प्यार से उसके सर पर हाथ फेर रही थी। सिंगल सीटर पर पल्लवी बैठकर रात के लिए सब्जी काट रही थी और अंतरा सोफे पर पसरकर फोन चला रही थी। निशांत टीवी देख रहा था और साथ ही थोड़ी बहुत बातें भी हो रही थी उनके बीच। अचानक ही टेबल पर रखा आहाना का फोन बज उठा। आहाना से पहले अंतरा ने लपक कर फोन उठाया और शैतानी मुस्कान लबों पर सजाते हुए आहाना को देखने लगी। जीजी, जीजू का फोन है, उठा ले, अंतरा ने शरारत से आंखें मटकाई। आहाना जो फोन उठाने के लिए उठकर बैठी थी उसकी बात सुनकर पल भर को घबरा गई, पर इससे पहले कि वो कुछ कहती जयंती जी ने अंतरा को गुस्से भरी निगाहों से घूरा। अंतरा, फोन दीजिए अनु को। अंतरा ने तुरंत ही इनकार में सर हिलाया और गालों को फुलाते हुए बोली, नहीं दूंगी, मैं अपनी जीजी संग मस्ती कर रही हूँ और आपको हमारे बीच आने की इजाजत नहीं। अंतरा, मैंने कहा फोन दीजिए अनु को, जयंती जी ने शब्दों पर जरा जोर देते हुए कहा। कठोर लहजे में आदेश दिया, पर अंतरा कहां मानने वाली थी। उसने तिरछी निगाहों से उन्हें देखा और झट से कॉल रिसीव कर ली। हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? अंतरा ने जीजा जी शब्द पर खासा जोर दिया था और फोन के दूसरी तरफ मौजूद अक्षय उसकी बात और ये आवाज सुनकर चौंक गया। अंतरा, अक्षय ने अंदाजा लगाया और इधर अंतरा ने तुरंत ही हामी भरी। जी अंतरा, आपकी इकलौती साली जो आपसे बहुत नाराज है। अक्षय अब कुछ सहज हुआ और उसकी बात सुनकर गंभीर स्वर में सवाल किया, और आप मुझसे नाराज क्यों हैं? मैं आपकी इकलौती साली हूँ, पर आप मुझ पर जरा भी ध्यान नहीं देते, हमेशा बस जीजी से ही बातें करते हैं, कभी मुझे भी याद किया कीजिए। अंतरा ने तो फट से जवाब दे दिया। अक्षय उसकी बात सुनकर सक पका गया। ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हें भी याद करते हैं। रहने दीजिए जीजू, अब झूठ बोलकर मेरा दिल बहलाने की कोई जरूरत नहीं। अंतरा ने मुंह हेट के हुए अपनी नाराजगी जाहिर की और खुद ही बात बदल दी।
कुछ देर बात करने के बाद उसने अक्षय की बात पहले निशांत फिर पल्लवी से भी करवाई और आखिर में उसने फोन जयंती जी को पकड़ा दिया। लीजिए जीजू, मम्मी से बात कीजिए। जयंती जी ने उसे नाराजगी से घूरा। वहीं दूसरी तरफ अक्षय ने बेबसी से अपनी आंखों को भींच लिया, गहरी सांस छोड़ी और आदर सहित उन्हें प्रणाम किया। नमस्ते मम्मी जी, खुश रहो बेटा, भगवान आपको दीर्घायु प्रदान करे। जयंती जी ने स्नेह भरे दिल से उसे आशीर्वाद दिया। कुछ घर परिवार की बातें हुई, फिर जयंती जी ने आहाना को देखा जो सर झुकाए बैठी थी और नाखून से सोफे को कुरेद रही थी। दामाद जी, हमें काम है, आप अनु से बात लीजिए। बेचारा अक्षय, जिसने उसी से बात करने के लिए फोन किया था, उससे जवाब तक देते न बना और आहाना शर्म से नजरें तक न उठा सकी। अनु, लीजिए बेटा, बात कर लीजिए दामाद जी से। जी माँ, आहाना ने हड़बड़ाते हुए सर हिलाया और सकुचाते हुए उनके हाथ से फोन ले लिया। उसकी झिझक और शर्म को समझते हुए जयंती जी ने उसे कमरे में भेज दिया। उसके बाद अंतरा की खबर लेनी चाही, पर तब तक में अंतरा कांड करके फरार हो चुकी थी। आहाना, कुछ देर की खामोशी के बाद अक्षय ने उसे पुकारा। आहाना अब तक कमरे में आ चुकी थी। उसने हिचकिचाते हुए जवाब दिया, जी। आहाना की आवाज़ सुनकर बेचारे अक्षय को करार आया। कहाँ थी आप और आपका फ़ोन अंतरा के पास कैसे पहुँच गया? वहीं बैठी थी, आपका फ़ोन आया तो उठाने ही वाली थी, पर मुझसे पहले अंतरा ने फ़ोन उठा लिया और उसके बाद मुझे परेशान करने के लिए आपसे बात करवाने लगी। आहाना ने संक्षिप्त में पूरी बात उसे बता दी, जिसे सुनने के बाद अक्षय ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, एक तरफ आप हैं जो खुद से कुछ कहती नहीं और दूसरी तरफ आपकी बहन है जो मेरी बोलती बंद कर देती है। क्यों, हमारे सामने तो बहुत बोलते हैं, खूब बातें बनाते हैं, फिर अंतरा से बात करने में इतना क्यों घबराते और कतराते हैं? आहाना के सवाल सुनकर अक्षय ने संजीदगी से जवाब दिया, आपकी बात अलग है आहाना, आप कितना सोच समझ कर बोलती हैं और आपसे ऐसा रिश्ता है कि शब्दों को नाप तौल कर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही क्या कहूँ ये सोचना पड़ता है। जो दिल में आता है बेझिझक आपसे बोल सकता हूँ, पर अंतरा आपसे बिल्कुल अलग है, वो इतनी बिंदास है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती है और कई बार बातों बातों में ऐसी बात बोल जाती है जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं होता। मैं समझती हूँ वो थोड़ी चंचल है, शैतानियाँ कर जाती है, पर दिल की बहुत अच्छी है और हंसी मजाक में वो बातें कह जाती है, आप उसकी बातों को दिल पर मत लीजिएगा, वो बस शरारत में बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती है। जानता हूँ कि अंतरा बहुत प्यारी लड़की है, पर उसकी शरारतों से ही डर लगता है। कोई बात नहीं, अभी तो नया नया है, वक्त के साथ आदत हो जाएगी। आहाना ने हामी भरी, फिर पल भर ठहरने के बाद सवाल किया, आपने आज इस वक्त फ़ोन किया, कोई बात थी? दूसरी तरफ से तुरंत ही अक्षय का जवाब आया, जी वो आपको बताना था कि आज जल्दी फ्री हो गया हूँ, अगर आप मिलने आ सकें तो बता दीजिए कहाँ आएंगी, मैं वहाँ से पिक कर लूँगा आपको। मैं अकेली नहीं आऊँगी, आहाना ने सकुचाते हुए कहा और उसकी ये बात सुनकर अक्षय मुस्कुरा उठा। जानता हूँ आहाना कि आप अकेली नहीं आएंगी, आपको जिसके भी साथ आना है आ जाइए, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं, बस बता दीजिए कि कब और कहाँ आऊँ आपको पिक करने, मैं आपको लोकेशन सेंड कर देती हूँ, आप बता दीजिए कितनी देर में वहाँ पहुँच जाएंगे, उससे पहले मैं अभी पहुँच जाऊँगी। ओके, बाय बाय। आहाना ने फ़ोन काटते हुए अक्षय को लोकेशन सेंड की और फिर जयंती जी को बताने नीचे चली आई। मुलाकात अगले भाग में।